ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने अपनी अक्टूबर 2024 की बैठक में लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। सबसे पहले इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
आज जो बैठक हुई थी MPC की, उसमें उन्होंने रेपो रेट को एक तरीके से चेंज नहीं किया है। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, एक तो ये एक नई कमेटी स्थापित की गई है, और पिछले कमेटी के बाद इस पहली कमेटी की ये पहली बैठक थी। और जो देश भर में 3 या 4 समस्याएं हैं, जो एक तरीके से ये पूरा जो RBI का जो मैंडेट है, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का और दूसरा लिक्विडिटी जाहिर रखने का, इसमें भारत में जो फूड इन्फ्लेशन है वो एक तरीके से एक चैलेंजिंग स्तर पे है, और ये अगले 2-3 महीने में एटलीस्ट मार्च तक, जो अगला क्रॉप आने तक, ये फूड इन्फ्लेशन एक तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा। और इसके कारण इसलिए उन्होंने इस टाइम ये रेपो रेट को घटाया नहीं है और इंटरेस्ट रेट बेशक स्टेबल रखा है। लेकिन उन्होंने एक चीज जो की है इस मीटिंग में, ये स्टैंड चेंज किया। पहले जो स्टैंड था वो अकोमोडेशन का स्टैंड था, जिसमें अकोमोडेशन का स्टैंड होता है कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पैंडेमिक से, अभी कोविड से निकला था तो इकोनॉमिक स्लोडाउन भी था, तो इसलिए इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट्स थोड़े लो रखे जाते हैं और बोरोइंग और स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से उसको प्रमोट करते हैं। अब क्या किया है इसमें, क्या होता है इसमें, थोड़े से वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है उसको टाइटन करते हैं, तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए। और क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है ऑल्दो 4.5% है और RBI के बैंड के बीच में है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के द्वारा उन्होंने ये इस टाइम कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन इसको न्यूट्रल स्टैंड किया है। और न्यूट्रल स्टैंड का ये मानना होता है कि RBI आगे जाकर के इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और जैसे इकोनॉमी के तरीके से उस टाइम जो सिग्नल्स आ रहे होंगे उस टाइम वो पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है।
सोमवार से शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर बैठक आज खत्म हो गई। इस पे कई अहम फैसले लिए गए। आइए मुंबई से हमारी संवाददाता प्रार्थना की एक रिपोर्ट सुनते हैं।
रिजर्व बैंक ने अपनी 3 दिवसीय बैठक के बाद आज रेपो दर को 6.5 पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इसके परिणाम स्वरूप स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर यानी बैंक दर 6.75% होंगे। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा है। इसके अलावा RBI गवर्नर ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को बदलकर तटस्थ कर दिया है। MPC की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 को होगी।
तो खास बात यह है कि सोमवार से जो बैठक शुरू हुई थी, तो उसके बाद आज जो है करीब 5 सदस्यों ने इसमें जो है इस फैसले के पक्ष में अपना निर्णय रखा। तो इसको आखिर ये बताइए कि फरवरी 2023 से ही रेपो दर में बदलाव नहीं हुआ है, महंगाई कहीं न कहीं से बढ़ रही है, दुनिया में अशांति है, हम सब जानते हैं, तो कहीं न कहीं से एक राहत भी है लेकिन लोगों पे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
अगर RBI इंटरेस्ट रेट घटाती है तो उससे क्या होता है, उससे मनी सप्लाई एक तरीके से बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन पे एक तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो फूड इन्फ्लेशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका अभी तो ये नहीं पता है कि उसके तेल के दाम पे क्या असर होने वाला, क्योंकि अभी तक तो हम रशिया से एक तरीके से बैलेंस कर रहे थे और पूरी दुनिया एक तरीके से, जो भारत का जो ये स्टेप था उसने पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस लो करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि पहले तो ये लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया रशिया से डील कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसका पूरे विश्व के ऑयल मार्केट पे जो इसका इम्पैक्ट हुआ और प्राइस स्टेबिलिटी लाए, सारे देशों ने एक तरीके से भारत की एक तरह प्रशंसा की थी। ये जो पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम में है और जो अनसर्टेनिटी है, पिछले हफ्ते में जो मिडिल ईस्ट में जो एक तरीके से तनाव बढ़ा है और अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, इसके कारण जो है रिजर्व बैंक ने एक तरीके से एक कॉशियस स्टेप लिया है और फिर भी एक थोड़ा सा कहते हैं ना विंडो खुला रखता है कि अगले मीटिंग में वो उस टाइम क्या परिस्थिति है उसको देखते हुए डिसीजन ले सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि रेपो रेट को एक तरीके से चेंज नहीं किया है और काफी वो स्टेटस को ही एक तरीके से सिस्टम में किया है।
थोड़ा सा हम उदाहरण लेते हैं, एक इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने मार्च 2022 से जुलाई 2023 के बीच 11 बार ब्याज दरों में इजाफा किया था, मगर हाल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। अब ब्याज दर 4.75% से 5% के बीच रहेगी। तो कुछ देशों ने हाल में फेड के फैसले का अनुसरण भी किया। भारत के संदर्भ में आप इसको किस रूप में देखते हैं, या क्या यह संभव था या संभव क्यों नहीं था, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
यूएस में जो फेड ने जो इतने सालों बाद जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट को गिराया है उसका एक अलग अलग कारण था। अगर आप देखें तो वहां पे जो कोर इन्फ्लेशन एक तरीके से कम हो रहा था, वहां पे जो इकोनॉमी में जो जॉब्स की क्रिएशन वो भी हो रहा था, तो इकोनॉमिक स्तर से वो काफी था। और ये जो हाई इंटरेस्ट रेट एक तरीके से उनको फर्दर ग्रोथ के लिए एक रुकावट सी पैदा हो रही थी। भारत के अगर आप दायरे में देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज है इसलिए कि इन्फ्लेशन को कैसे काबू में रखें, और अगर ये फूड इन्फ्लेशन का थोड़ा सा भी उसमें उम्मीद होती कि ये अगले 2-3 महीने में कम हो जाए तो शायद रिजर्व बैंक कोई और निर्णय लेता था। लेकिन क्योंकि अगले ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक इसका कोई एक तरीके से खुलासा सामने नहीं आएगा तो एक तरीके से कॉशियस थे और उन्होंने रेट्स नहीं गिराए। लेकिन उन्होंने जो स्टैंड बदला है आगे जा करके जब अगली बैठक होगी तो उस समय क्या परिस्थिति है, विश्व में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में फूड इन्फ्लेशन के क्या प्रोजेक्शंस हैं, आप हो सकता है देख सकते हैं कि वो अगले मीटिंग में एक तरीके से कोई कटौती लाए इंटरेस्ट रेट्स।
और साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रा स्फीति का अनुमान जो है वो 4.5% पर बरकरार रखा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप?
ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिग्नल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक कहता है कि देखिए अभी भी जो आप देख रहे हैं इसके बावजूद भी जो इस क्वार्टर में जो क्वार्टर 2 था उसमें वो 7% ले गया है 7.2% से, लेकिन वो जो क्वार्टर 3 के लिए अगले क्वार्टर में बोला 7.4 होगा, 7.3, 4 में भी 7.4% होगा। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इस वर्ष ग्रोथ रेट करीब 8.2% होगा। ये
जी
बहुत ही अच्छा सिग्नल है खास तौर के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा सिग्नल है, क्योंकि जो कंपनीज तकरीबन 75-80% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है अब वो सोचेंगे कि चलो अगर इतने ही ग्रोथ रेट होगा क्या हमारी कैपेसिटी उसके लिए आगे ग्रोथ के लिए काफी होगी कि हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है और जो इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है।
जी, इसी को लेकर के जो कुछ आंकड़े हैं उसको थोड़ा श्रोताओं को बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 7%, तीसरी तिमाही के लिए 7.4% और चौथी तिमाही के लिए 7.4% पर बरकरार रखा है। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की, भारत की इकोनॉमी को देखते हुए इसको थोड़ा सा आप विस्तृत रूप पे इसको समझाएं।
सिंपल से शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस जो 3 महीने में जो गुजर गए हैं 3 महीने में उसमें एक तरीके से जो पहले पिछले कई मीटिंग में जब आरबीआई ने एक तरीके से प्रोजेक्ट किया था बोला था 7.2% के लगभग ग्रोथ होगा, लेकिन उनके प्रोजेक्शन से कम हुआ 7%। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर में जो हमने पहले एक तरीके से प्रोजेक्ट किया था जिस स्तर पे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी उससे ज्यादा अभी हमें अनुमान है, क्योंकि जैसे कि पहले 7.3% बोला था जैसे आपने कहा था अभी उन्होंने 7.4% बोल दिया है और
जी
क्वार्टर 4 के लिए भी 7.4% बोला है जिसके अलग 7.3% है। तो दिखा रहे कि ग्रोथ होगा आगे जाकर के और ग्रोथ में कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं आएगी।
जैसा कि आपने भी कहा कई बार, तो जो गवर्नर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कीमतों की स्थिति है इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, नहीं तो इसमें फिर से तेजी आ सकती है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से ईमानदार और निष्पक्ष रहने और टिकाऊ प्रथाओं का पालन पालन करने को कहा और चेतावनी भी दी कि रिजर्व बैंक इन क्षेत्रों पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। तो यह चेतावनी क्यों दी गई और गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं क्या गलतियां कर रही हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं?
अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से और पिछली कई मीटिंग से आरबीआई खास तौर पे दो चीजों पे काफी कॉशनरी एक तरीके से स्टेटमेंट कर रही है। पहला जो है, जो क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं और क्रेडिट कार्ड के जो यूजेज है, आउटस्टैंडिंग लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो उसका काफी एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है और उसपे ध्यान देने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आरबीआई गवर्नर ने। और क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जैसे कि कंजम्पशन के लिए होते हैं और माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए और दूसरे लोन्स के लिए, और उन्होंने इस बार भी जिक्र किया था कि ये क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उस पे कोई फर्दर एक्शन लेना हो, फर्दर एक्शन यानी कि कोई लिमिट्स डालना हो या उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना हो या कुछ, वो भी आरबीआई कर सकती है। और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो इंडिविजुअल जैसे आप और मैं है या जो आपके हमारे जो सुनने वाले जो है, उनको जो एक्सपोजर है उसको उनको कैसे सेफ गार्ड करें, और एक तो साइज और दूसरा क्वालिटी। आपको याद होगा कि पहले हम ये कहते थे कि ये चाइनीज ऐप को थोड़ा सा वो करते थे, तो ये उनको तो हटा दिया, बट अभी ये भी एक तरीके से इस होल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। दूसरा जो आपने जिक्र नहीं किया था कि साइबर सिक्योरिटी पे उन्होंने और म्यूल अकाउंट्स यानी कि फर्जी अकाउंट्स जो है उस पे भी ध्यान दिया था, और साइबर सिक्योरिटी और अपने ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए उन्होंने जो आरटीजीएस है और नेफ्ट में एक वेरिफिकेशन स्कीम प्रपोज किया है, जिससे अगर आप बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हो तो अगर कोई गलती हो गई, ठीक है, जैसे आप मुझे दिलीप को भेज रहे हो लेकिन आपने मेरा नंबर गलत कर दिया, और जब आप वेरीफाई करोगे तो वो अकाउंट कहेगा कि नहीं, ये दिलीप का नहीं है, ये अशोक का है, तो फिर आप अपना ट्रांजैक्शन और अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर फिर चेक कर सकते हो। तो ये भी एक उन्होंने सुविधा लेके आए हैं, और ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और हर जो लिस्नर है जो सुन रहा है इसको, अपने ये इस सेक्टर में जो एक्सपोजर है उसको कम से कम करें, क्योंकि इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और खुद के लिए भी अच्छा हो।
देखिए, अगली बैठक जो है वो 4 से 6 दिसंबर को होनी है, अभी काफी वक्त है, लेकिन तब तक अगर उम्मीद करें कि दुनिया के तनाव और वॉर शायद खत्म हो जाए या उसमें काफी कमी आ जाए, तो अगर हम उस बैठक से उम्मीद करें तो क्या कर सकते हैं?
एक तो जिसका जो इम्प्लीकेशन है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है इन्फ्लेशन बीइंग कंट्रोल में रहना और टारगेटेड रेंज के जैसे होना। अगर ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा अगले 2-3 महीने के लिए और आगे की फूड इन्फ्लेशन का एक तरीके से काबू आ जाएगा, तो उसको शायद आप देखें कि इंटरेस्ट रेट और दूसरे जो सीआरआर रेट्स में है उसमें बदलाव आएगा और इंटरेस्ट रेट शायद घटाया जाएगा। लेकिन ये जैसे आपने अपने प्रश्न में ही बोला था कि फूड इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
अगर हम एक आज की जो बैठक है, या अगर इसके हम निचोड़ की बात करें, सारांश की बात करें, सार की बात करें, तो आप आर्थिक दुनिया पे आपकी नजर बारीक रहती है, आप इसको किस रूप में देखते हैं?
इसमें अगर आप देखें तो 5 चीजें आए हैं। एक तो उन्होंने रेपो रेट एक जगह अनचेंज रखा है, दूसरा इन्फ्लेशन अभी भी एक थोड़ा सा चिंताजनक ही है, पूरे तरह से हम वो बैटल नहीं जीत पाए हैं, तीसरा जो है भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ की आंकड़े हैं वो एक इंटैक्ट है, आगे जाकर के हम थोड़ा सा जो पहले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी कम ग्रोथ हुआ है, आगे जाकर हम उसको एक तरीके से मेकअप कर लेंगे। तो नेक्स्ट है जो 4th पॉइंट है, इसमें बैंकिंग को ज्यादा और इंक्लूसिव बनाने का और कैश का जो लेन देन है इकोनॉमी में उसको कम करने का, और 5वां जो रिस्क हो सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह और क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए, उसको एक तरीके का कैसे काबू करें और पूरे सेक्टर को मजबूत बनाए।
दिलीप चुनाय, आप सुर्खियों में आए और हमारे श्रोताओं को आपने अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका आभार।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चुनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 0944044।